ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, बीमारी और भूख से नागरिकों के जीवन की रक्षा करना है सरकार का मुख्य कर्तव्य। आज कोरोना संक्रमण के 1207 नए मामले आए सामने, वहीं 1147 लोग हुए संक्रमण मुक्त। हुमला की हिलसा में चीन ने नहीं किया है नेपाली भूमि का अतिक्रमण, गृहमंत्री राम बहादुर थापा का कथन। और दुनिया भर में कोरोना का कहर है जारी, अब तक 9,90,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कोविड-19 महामारी लगायत विभिन्न संकटों के मौजूदा दौर में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का दायरा बढ़ गया है। बीती रात संयुक्त राष्ट्र की 75वीं महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन का विकास हो जाने के बाद इसकी सुपथ, सरल और सहज पहुंच, ज्ञान व अनुभव साझा करने और दवा व अन्य स्वास्थ्य उपकरणों की समय पर आपूर्ति करने की बात पर जोर दिया। इस बात का जिक्र करते हुए कि रोग और भूख से जनता की सुरक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व है, उन्होंने कहा कि इसके लिए नेपाल हर मुमकिन कोशिश करने के साथ ही विभिन्न स्रोत का उपयोग कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एकताबद्ध भी उतनी ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है, ये बताते हुए कि वर्तमान संकट की घड़ी में भी भू राजनीतिक टकराव की स्थिति पुनः दिख रही है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि विश्व में कई ऐसे हिस्सों में शांति और स्थिरता का आकांक्षा अब भी पूरी नहीं हो सकी है। उन्होंने हथियारों की होड़बाजी, जलवायु परिवर्तन एवं प्रकोप की चुनौती लगात बातों पर भी ध्यान आकर्षण कराया। आज देशभर में कोरोना के 1207 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 1147 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। आज संक्रमित हुए कुल 1207 लोगों में काठमांडू घाटी के 724 लोग शामिल हैं। इसे मिलाकर देशभर में कोरोना से अब तक संक्रमित होने वालों की तादाद 71,821 हो चुकी है, जबकि अब तक 53,013 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बहरहाल देशभर में कोरोना के सक्रिय संक्रमितों की संख्या 18,341 है। वहीं आज 8 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 467 हो गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में आज मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ. जागेश्वर गौतम ने ये जानकारियां साझा की हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने नागरिकों से आग्रह किया है कि कहीं यात्रा करते ही महज आशंका के आधार पर ही कोरोना जांच न कराएं। ये बताते हुए कि संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के 5 दिनों तक जांच कराने से संक्रमण है या नहीं इसका पता नहीं चल पाता है। मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ. जागेश्वर गौतम ने कहा कि यात्रा करते ही कोरोना परीक्षण न कराएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यात्रा करने वाले व्यक्ति 2 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहें और इस दौरान अगर कोरोना वायरस संबंधी कोई लक्षण दिखता है तो संबंधित स्थानीय सरकार को जानकारी दें। अत्यंत जरूरी होने पर ही यात्रा करने का सुझाव देते हुए डॉ. गौतम ने ये सभी से यात्रा करते वक्त जन स्वास्थ्य के मापदंड का पूरी तरह से पालन करने का अनुरोध भी किया है। गृहमंत्री राम बहादुर थापा ने कहा कि हुमला के हिलसा में चीन ने नेपाली भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है। आज सुर्खियों में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ये बताते हुए कि इस बारे में परराष्ट्र मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है, उन्होंने कहा कि संचार माध्यमों में चीन द्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण की खबरें आई हैं वो सच नहीं है। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने विदेशों में रह रहे नेपालियों से अपने ज्ञान, हुनर और प्रविधि को नेपाल में हस्तांतरण करने का आग्रह किया है। आज गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन एशिया पैसिफिक की 8वें क्षेत्रीय सम्मेलन और पहले विज्ञ सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ग्यावाली ने कहा कि कोविड-19 की महामारी के कारण प्रभावित नेपाल के अर्थतंत्र को संभालने के लिए नई प्रविधि का प्रयोग कर देश को समृद्ध बनाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि विदेश में रह रहे 3,00,000 नेपालियों को स्वदेश लाया जाएगा। अब तक 76,000 नेपालियों का उद्धार किया जा चुका है। कार्यक्रम में संघ के पूर्व अध्यक्ष देवमान हीराचन और शेष खले ने विदेशों में रह रहे नेपालियों के लिए निवेश मैत्री वातावरण बनाने का आग्रह किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ।
1498 फोन गर्नुहोस्।
समस्या पोस्टपेनमा नि आयो।
1498 फोन गर्नुहोस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेडको पुक नम्बर पनि चाहिएको थियो।
त्यसको लागि पनि 1498 फोन गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कुनै पनि समस्या आएमा जे जे सोध्न मन छ 1498 फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने कोविड 19 के जोखिम के मद्देनजर वैकल्पिक शिक्षण को प्राथमिकता में रखने का आग्रह किया है। शिक्षा पत्रकार समाज द्वारा आज आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल ने कहा कि स्कूलों में संक्रमण का खतरा बना रहता है और यदि संक्रमण बढ़ गया तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वर्तमान विषम परिस्थिति के मद्देनजर वैकल्पिक शिक्षण पर ही ज्यादा ध्यान देना होगा। कोविड 19 की महामारी के कारण कमजोर पड़े पर्यटन क्षेत्र को गतिशील बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी में देश दर्शन कार्यक्रम के अभियान की शुरुआत की गई है। आज देश दर्शन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय ने अभियान का लोगो, संदेशमूलक वीडियो आदि सामग्रियों को साझा किया। मंत्री भट्टराय ने कोविड 19 की महामारी के कारण शिथिल पड़े पर्यटन व्यवसाय को गतिशील बनाते हुए आर्थिक गतिविधि को बढ़ाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि व्यवसाय में गतिविधि बढ़ाने के लिए सरकार ने हवाई उड़ाने, होटलों, रेस्टोरेंट, व्यवसाय, पदयात्रा, पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों को खोल दिया है। बता दें कि इस बार देश दर्शन कार्यक्रम का मूल नारा पर्यटन के लिए हमारा संदेश, घूमे देश पहचाने अपना परिवेश है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा कि खान पान और अपनी दैनिकी में ध्यान दिया जाए तो कैंसर रोग से बचा जा सकता है। बीपी कोयराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल की 21वीं वार्षिक उत्सव तथा 16वीं राष्ट्रीय कैंसर सतर्कता दिवस के अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मंत्री ढकाल ने कहा कि कैंसर विषय में जन चेतना जगाना वर्तमान समय की मांग है। ये बताते हुए कि अभी देश निरोगी नेपाल निर्माण के क्रम में है, उन्होंने इस अभियान में साथ देने का नागरिकों से आग्रह भी किया है। बता दें कि दुनिया में वार्षिक 96 लाख लोग कैंसर के कारण जान गंवाते हैं, जबकि नेपाल में वार्षिक करीब 26,000 से ज्यादा के लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो चुकी है। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड पूरा कर सिरहा मिर्चैया नगर पालिका के विद्यालय रविवार से संचालित होंगे। विश्वव्यापी रूप में फैले कोविड 19 के संक्रमण के कारण लंबे समय से अवरुद्ध पठन पाठन को नगर पालिका के निर्णय अनुसार कल से संचालित किया जाएगा। मिर्चैया नगर पालिका की शिक्षा शाखा ने सूचना जारी कर सुरक्षा मापदंड पूरा करके विद्यालय संचालन होने की जानकारी दी है। भारी बारिश के कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत बुटवल तानसेन सड़क खंड के विभिन्न स्थानों में भूस्खलन होने से सड़क अवरुद्ध है। सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत तानसेन 8 डुमरे से रूपनदेही के सिद्ध बाबा तक के सड़क खंड में विभिन्न 18 स्थानों में भूस्खलन होने से सड़क अवरुद्ध होने की जानकारी प्रदेश नंबर 5 सांसद तुलाराम घरती के हवाले से हमारे संवाददाता ने दी है। मकवानपुर में नदी में बहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। कैलाश गांव पालिका वार्ड नंबर 1 और 5 की सीमा के पास बिमेरे नदी पार करने के दौरान स्थानीय 38 वर्ष के धावा स्यांगतान और भीमफेदी गांव पालिका 1 स्थित त्रिखंडी मंदिर के नजदीक स्थित राप्ती नदी में बहकर वीरगंज की 18 वर्षीय प्रियंका सोनी की मौत होने की जानकारी पुलिस ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,28,40,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,42,13,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 9,94,000 से अधिक लोगों की जान गई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां संक्रमितों की संख्या 72,51,000 से अधिक है, जबकि संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 2,08,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं भारत में 59,15,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 93,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ब्राजील में 46,92,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,40,000 से अधिक लोग की मौत हो चुकी है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस समाचार के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, बीमारी और भूख से नागरिकों के जीवन की रक्षा करना है सरकार का मुख्य कर्तव्य। आज कोरोना संक्रमण के 1207 नए मामले आए सामने, वहीं 1147 लोग हुए संक्रमण मुक्त। हुमला की हिंसा में चीन ने नहीं किया है नेपाली भूमि का अतिक्रमण, गृहमंत्री राम बहादुर थापा का कथन। और दुनिया भर में कोरोना का कहर है जारी, अब तक 9,90,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।